راج نے ہی اس نظریے اور سنسطے پر بات کی ہے. افلاطون کی جو مشہور کتاب ہے ریاست اور دنیا کی اکثر و بیشتر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا, اس کا بنیادی موضوع ہی ریاست ہے. اور ریاست کے لیے کہ اس کا نشو نما کیسے ہونا چاہیے, افراد کیسے ہونے چاہیے, اور وہاں پر نظام کیا ہونے چاہیے, ماوردی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس فکر کو لکھا ہے. اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے جن فلاسفہ نے مقاصد شہریت پر زور دیا ہے وہ لوگ اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اگر کوئی آدمی ان کی فکر اور ان کی کتابوں سے واقف نہیں ہے تو وہ کبھی بھی شریعت اور زمانے کو تصدیق نہیں دے سکتا. شریعت کو کسی بھی دور کے ساتھ اگر تصدیق دینی ہو اور دونوں کو ملانا ہو تو یہ ضروری ہے کہ ایسے افراد اور جماعت کو مقاصد شریعہ کی خبر ہونی چاہیے. شریعت کے مقاصد کیا ہیں اور وہ مقصد وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس میں کس حد تک ترمیم تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اس لیے پورے اسلام کی تاریخ میں چند ایک لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مقاصد شرعیہ پر بحث کی ہے کہ شریعت کا مقصد کیا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے شریعت کا راستہ اس میں کتنی تبدیلی کی گنجائش ہے. اور یہ بہت مشکل چیز ہے, لیکن اگر کسی انسان نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا, حتیٰ کہ کسی مفتی نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا, تو حقیقت میں وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ نماز روزہ یہ مسائل بتا دے, لیکن وقت کی سیاسیات پر شروع کر سکے اور اتنا بڑا دماغ ہو کہ ملک اور قوم میں پیش آمدہ مسائل کو حل کر سکے, یہ وہ شخص نہیں. تو مقاصد شرعیہ پر بحث کی ہے ابن خلدون نے مقدمے, اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھی لیکن اس شخص کا علم اور اس کی تحریر اور اس کی سوچ یہ خالصتا اللہ کا انعام تھا جو اللہ نے اس عمر پہ کروایا. ایک نابینا آدمی اور اتنا کچھ لکھ پڑ جائے, اتنا کچھ کر لے, بہت بڑی بات ہے. دنیا میں ساری ترقی اور زندگی میں सारी तरक्की का राज सिर्फ इतनी सी बात में छिपा हुआ है कि आदमी में जो पोटेंशियल है उसे एक्चुअल करना सही बात इससे ज्यादा कुछ हर बच्चा जो पैदा होता है अल्लाह ने उसमें सलाहियतें रखी इतनी तो सलाहियत है ही कि वो दूध को चूस ले और इतनी तो सलाहियत होती है अगर बच्चा मासूम ना हो तो बड़ा हो तो एक दरख्त तोड़ ले और बड़ा हो तो वो एक किताब पढ़ ले जितनी जिस बच्चे में सलाहियत है अंदर छुपी हुई पोटेंशियल पावर इसको एक्चुअल में तब्दील करना करके दिखा देना बस यही तरक्की है और एक आदमी को अल्लाह ने ताकत दी है और वो उठ के फर्ज कर दीजिए सांप को मार सकता है पर मारता नहीं बस बैठा रहता है बैठा रहता है काम कोई नहीं करता तो सांप अगर उसको काट ले तो सांप ने अपनी पोटेंशियल पावर को एक्चुअल में तब्दील कर दिया और ये उसके हिम्मत करके मार देता तो इसने अपने अंदर की ताकत को हकीकत में तब्दील कर दिया तरक्की यही है और क्या है इसीलिए मुश्रिकीन मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हार गए और भी बड़ी वजह थी सबसे बड़ी वजह तो अल्लाह की मदद थी अल्लाह की मर्जी तो बड़ी थी लेकिन वो पक्क होती रही उनकी तरफ से लोग चाहो कुल्ला मिसाल अगर हम चाहें तो कुरान से किताब लिख लें हम चाहें तो ये कर लें हम चाहें तो वो कर लें बेटी तुम चाहते ही ये करके दिखा दो करो ना और कुछ नहीं हुआ कुरान जैसी किताब से तो लिख के ले आओ अगर पता चले कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आती है वो वही सही नहीं है इंसान ऐसी भी बना सकता है ठीक करके यही वो फर्क है अहले सुन्नत के जमात और जमात और मौतज़िला के दरमियान कि हम कहते हैं हकीकत में कुरान जैसी कोई किताब बनी नहीं सकती और मौतज़िला कहते हैं कि अगर काफिर चाहिए हिम्मत करते तो लिख सकते थे लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया अगर अल्लाह ना मना करता तो लिखते हम कहते हैं अगर आलम से मना किए किया था वो लिख ही नहीं सकते कुरान जैसी किताब ला ही नहीं सकते तकदीर की बात अलग है इसलिए जितने भी दुनिया में बच्चे ये कहते हैं ना कि मुझे ये भी आ सकता ये भी आ सकता ये भी कर सकता ये कर सब सकते थे ना बेटे किया किसी मतलब इतना था सारी तरक्की और तनजिल रखती थी शादी रहमतुल्लाह को अल्लाह ने जितनी भी सलाहियतें दी थी उस आदमी ने काम करके दिखाया हैरान होते हैं हम जब उसके कामों पर नजर करें कि कितनी चीजें उन्होंने लिखी और जो चीज लिखी है एक से एक शानदार चीज लिखी है शास्त्री रहमतुल्लाह बहस करते हैं मकासद शरीयत पे कि शरीयत के मकासद क्या इब्ने अबी दल आज मालिकी है रहमतुल्लाह अलैह वो मकासद शरीयत पर बहस करते हैं कि शरीयत के मकासद क्या ऐसे ही अल्लाह का राफी है इन मालिकी फुकहा में कर राफी रहमतुल्लाह अलैह बहस करते हैं कि शरीयत के मकासद क्या और कलाफी ने अल-फुरूक जो लिखी है कमाल की चीज लिखी है एक मज़मून अल्लाह ताला की तौफीक से भी लिखना हुआ और वो बुनियादी तौर पर आज के जमाने के उलमा के इख्तलाफ के है कि मुसलमानों को अपना मीडिया कायम करना चाहिए या और चैनल खोलना चाहिए तो जाहिर है हमारे बहुत से उलमा जो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं हराम और कुछ उलमा उसके जवाब की तरफ भी गए तो उस कश्मकश में हमने एक चीज सामने रखी कि तहरीर में सब जाएगा आ जाएगा इंशाल्लाह लोगों के पास कि जिन लोगों ने मकासिद शरईया पर गौर किया है वो इस बारे में क्या कहते हैं तो शाफी इब्ने वीर लहाज मालकी इब्ने कुलदूम अल्लामा कुराफी और फिर आखिरी दौर में ताहिर इब्ने आशूर اللہ شاہ علیہ محمد دیوی رحمت اللہ علیہ یہ سب کے سب لوگ مقاصد شرعیہ پر بحث کرتے ہیں اور مقاصد شرعیہ پر جو آدمی نہیں بات کر سکتا نہیں جانتا تو یہ کر سکتا ہے کہ نماز روزے میں فتوا دے دے نہ اسے حق پہنچتا ہے نہ اسے بولنا چاہیے ان مسائل میں جو مسائل مملکت سے اور دنیا سے تعلق رکھتے ہیں یہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ شرعی مقاصد چیز کیا ہو इसीलिए बहाने और गालिबन कराफी या सारे न्याशूल रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अगर कोई मुफ्ती सिर्फ फतवे की किताबों के जाय के अल्फाज पढ़कर फतवा दे और मुआशरे में इसकी तदबीक न कर सके तो उसे फतवा देने का हक नहीं वो कहते हैं मुसलमाना मकासिद शरईया क्या है वो कहती है चीज को देखो चीज का मकसद क्या है और उस मकसद को कैसे हासिल किया जा सकता है हकुलाफी ने एक मिसाल लिखी है और हुआ ये कि मुसलमान पहली सदी के आखिर तक तकरीबन और दूसरी सदी हिजरी के अवाइल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल को मुश्किल से 100-150 साल हुए होंगे कि स्पेन और फ्रांस और इन सारे इलाकों मुसलमानों की हुकूमत कायम चार पांच सौ साल जब शरी निजाम चलता रहा तो लोगों के दिल से हुक्मरानों पर उलमा पर बादशाहों पे सिपाहसालार पे आजादी तंजीर की आजादी की वजह से इन लोगों का खौफ निकल तो जब आवाम के दिल में सदर वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ जैसे जिन लोगों का की इज्जत और एहतराम न रहे तो लोगों के लिए कानून तोड़ना आसान हो जाता है अगर पता हो शहर में आई जी है डी आई जी है वो अगले दिन खड़ा होता है कभी इधर खड़ा होता है कभी इधर खड़ा होता है और सजाएं भी मिलती हैं और चालान भी होते हैं शहर में तो लोग उस आई जी का डी आई जी का नाम सुन के भी मानते हैं और जब पता हो कि शहर में कोई चेक करने वाला नहीं है ग्रुप में कोई चेक करने वाला नहीं है तो लोगों के लिए कानून तोड़ना आसान होता है इसलिए उन्होंने कहा शरीयत के मकासिद में से ये है कि हुक्मरानों का रोज लोगों के दिलों में बैठना चाहिए सही नाम लाम ظاہر ہے یہ بحث ہی بیکار ہے کہ ان میں کوئی غرور تھا حکمرانی کی وجہ ہاں اللہ مسلم سے بہت دور تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا کوئی پتہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے احترام میں تھے کھڑے ہوئے صاحب رضی اللہ عنہ نہیں تو بتائیے جب کوئی بات نہیں تھی لیکن عمر کے اللہ نے جلدہ لگایا ہے اور فرمایا آپ اگر تمہیں خلافت کا احترام نہیں ہے خلافت کو بھی تمہاری کوئی ضرورت ہے اب بتائیے صاحب رضی اللہ کو اٹھنا نہ اٹھنا یہ غلط بات ہے اس کی کہ بات عمر رضی اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے یہ غلط مسئلہ ہے لیکن ایک مملکت کا فرد بن مومنین کا احترام کیوں نہیں کرتا خلافت کا احترام ہی کیوں نہیں کرتا یہ ایک الگ مسئلہ ہے صاحب رضی اللہ کو کچھ کہنا کوئی معمولی بات نہیں اس لیے کہ صاحب اتنے بڑے آدمی تھے کہ عمر رضی اللہ نے اپنے بعد چھ آدمی جو خلافت کے لیے فرمائے کسی کی سفارش نہیں کی ایک لفظ نہیں فرمایا صرف صاحب رضی اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو خلافت ملے تو اس کا اہل ہے یہ نہ ہو کہ تم سوچو کہ میں نے اپنے کوفہ کی عمارت سے ہٹا دیا تھا تو کوفہ سے جو میں نے ہٹایا تھا آپ کو تو سعد نہ اہل نہیں تھے کوفہ کا صوبہ وہ نالائق इतने लोग थे कि वो इतने अच्छे अमीर के रहते हैं कोई काबिल नहीं थे कि इतना बड़ा अमीर पे हुक्मरानी कर ये फरमाया तो जब हुक्मरान हो क्या वो लोगों के दिलों में होता है तो लोग फिर कानून की भी पाबंदी करते हैं कि कानून की कोई चीज है इस मीडिया को इतनी आजादी दे दी जाए कि वो हुक्मरानों के नाम पे कार्टून और लतीफे और पैसे लगाए तो फिर वहां की चीज बर्बादी है पांचवी चौथी पांचवी सदी के आते आते फ्रांस और स्पेन में हुक्मरानों का वो रोग बाकी नहीं रहा नतीजा ये कानून के लिहाज में कमी हो गई तो उन्होंने कहा मिल बैठे और कहा कि किस तरह आकर हुक्मरान काजी सिवा तला इन लोगों का लोगों के दिलों में रोक बैठना चाहिए ताकि कानून और निजाम मुस्तरद रहे तो पता चला अब उस जमाने पे गौर कीजिए जब लोग इतनी जल्दी सफरती कर सकते थे और कस्बे महदूद होते थे शहर महदूद होते थे और शहर बाकायदा बनाए जाते थे आबादियां खुद बहुत ही बढ़ जाती बाकायदा हुकूमत से इजाजत से ये शहर करते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्बर से नाम गुजर रहे थे एक जगह से उन्होंने एक जगह एक रेखा मकान बनते हुए तो कई मरतबा वहां से गुजरते थे तो जब मकान की तामीर देखी तो उन्होंने जाकर कहा कि अब ऐलान करो कि मदीना मुनव्वरा में आज के बाद कोई मकान नहीं बनेगा और मैंने आज उस जगह पे मकान बनते देखा है जहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उमर अगर आबादी मदीना मुनव्वरा की यहां तक पहुंच जाए तो फिर इस शहर में कोई नया घर आबाद नहीं होता फिर लोग दूसरा शहर आबाद करते क्योंकि शहर के मसाइल अपने होते हैं आबादी बढ़ जाने से मसाइल पैदा होते हैं हजरत उमर ने इस्लाम जाके पाबंदी लगा दी जनरल मदीना मुनव्वरा में अब कोई नहीं अब बाहर जाओ वहां जाकर शहर तामीर करो उस जमान के शहर से तो परान ये काजी सारे मिल बैठे तो इन्होंने कहा अब इसका तरीका ये है कि हुक्मरानों के मुजस्मे बनाए जाए काजियों के बुत बनाए जाए और हर चौक में हर चौराहे पर खुलफा के और काजियों के बुत लगाए जाएं ताकि लोग उतरते चढ़ते चलते फिरते आते जाते इनको देखें तो उनके दिल में इन चीजों का रोग कायम हो जब रोग कायम होगा तो फिर कानून की पाबंदी आसानी से हो जाएगी वो सारी अहादीस और सारी रवायात जिनमें बुतों का बनाना मुजस्मों का बनाना नाजायज और हराम था उनको पढ़ने के बावजूद अब उन खुलफा ने फुकहा ने फतवा दिया और स्पेन में उलमा के काजियों के सबके बुत और सब काजियों के बड़े बड़े स्टैचूज और बड़े बड़े मुजस्मे पत्थर के तराश के हर जगह लगाए गए मुंबई करने लगे लोगों के दिल में इन चीजों का रोग था कराची रहमतुल्लाह लिखता है कि ये मकासिदे शरईया में से है कि हम अपने मुल्क में कानून का निजाम कानून का रखवा लें हम कानून को कायम करें और उसके लिए हमें ये तरीका इख्तियार करना पड़ रहा है और फिर इस पर उन्होंने मिसालें दी हैं कि किसी शरई मकसद को हल करने के लिए हमें किताब व सुन्नत की तालीमात का गौर करना पड़ता है और अगर वो मकसद किसी ऐसे तरीके से पूरा होता है जिसमें इन्हराफ करने से किताब व सुन्नत की किसी बात को तावील करने से वक्ती तौर पर एक तरफ करने से हमें मकसद हासिल हो सकता है तो हम सब तोड़ जी लेंगे इस चीज को नहीं करेंगे फिर उन्होंने लिखा कि सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला का उसका यह है कि मदीना मुनव्वरा में रहते थे और वो ऐसे कपड़े पहनते थे जिनमें पैबंद लगा हुआ होता और वो जब गए शाम वो हैरान रह गए वहां हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की आंख बांध दी कहते मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुर्सी रखी हुई है उस पर बैठे हुए हैं उनके अंदर बेहतर से बेहतर लिबास पहने हुए हैं दफ्तरों में रेशमी पर्दे पड़े हुए हैं बाकायदा नौकर रखे हुए हैं नौकर को इजाजत देता है फैक्ट्री के अंदर आता है नहीं तो आ नहीं सकता कहां अजमर रजी अल्लाह अन्हु खुद के उनसे रूम का तबीर मिलने आया तो उससे पूछा कि तुम्हारे अमीर मोमिनी का महल तो उन्होंने कहा कोई महल नहीं होता तो यहां हम घर में रहते हैं तो उसने कहा मैं काम करता रहा मैंने कहा उनका मैंने अभी देखा था मस्जिद में वो लेटे थे तो उसने ये कहता है मैं गया तो एक शख्स ईंट सर के नीचे रख के सो रहा है तो लोगों से पूछा मेरे रोल का यही तो मैं हजरत अल्लाह के पास बैठा मुझे नहीं पता क्या हुआ मैं कांपने लगा और मेरे जिस्म की कपकपाहट से उनकी आंख खुली गई बैठे बताया कौन कहां से आए हो और कहां ये तुम्हारे दिलान देगा तो उन्होंने देखते ही पूछा है रहते ये सब क्या है बादशाह जैसे उनका मिलोमिनी जिस जमीन में हम रहते हैं ईसाइयों से रोजमर्रा का वास्ता है सजीर आते जाते हैं हमें यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ता है कि इलावा काम चलता नहीं है तो तुम्हारे दिल लाल का ला आमर का वाला भाव ना मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये दर्द जिंदगी का आंकड़ को ना मैं मना करता हूँ मतलब ये है कि तुम खुद अपने हालात को बेहतर करो गुलाबी ये मिसाल देने के बाद लिखा है ये चीजें वो कहते हैं कि मकासिद शरईया हमें कैसे हासिल हो सकते हैं तो मकासिद शरईया इसको पढ़ना चाहिए कि शरीयत के मकासिद से किन लोगों ने वैसे अच्छा लिखा है नारू में से एक है अब मकासिद शरईया में से एक चीज यह है कि स्टेट कायम की जाए रियासत कायम की जाए मुसलमानों पर हुक्मरान होना चाहिए खलीफा होना चाहिए अमीर होना चाहिए कोई ना कोई ऐसा निजाम होना चाहिए कि उस निजाम की वजह से मुसलमान अमन चैन और इत्मीनान का जिंदगी बसर करते हैं बहस ये छिड़ी है और खास तौर पे हमारे ही खास दौर में कि हम स्टेट के लिए हैं या स्टेट हमारे लिए पाकिस्तान हमारे लिए बना है या हम पाकिस्तान के लिए बने अगर हम इस मुल्क के रहने वाले अपनी मुमलिकत के लिए हैं तो फिर मुमलिकत हमें कुछ दे या ना दे इसके एक एक इंच की हिफाजत के लिए हमें अपना खून बहा देना चाहिए इसी के हमारे जिंदगी का मकसद भी यही है कि हम अपनी मुमलिकत का दिफा करें और हम उस पर कोई आंच ना और अगर मामला है उल्टा कि रियासत इसलिए बनाई जाती है कि लोगों को फायदा उसका पहुंचे और लोगों को रियासत की वजह से सहूलतें मिले और रियासत लोगों की खिदमत करे पहला मतलब ये होगा कि हम रियासत की खिदमत करें हम जमीन को बचाएं रियासत हमें मार दे कोई हक दे या ना दे हम हमेशा अपने वतन के वफादार रहे ये अलग बात है एक ये कि वतन हमारा वफादार रहे हमारी ख्याल करे अगर यूं हो जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि रियासत अगर हमारे हकूक पूरे करती है तो फिर हमें इस पर अपनी जान कुर्बान करनी है और अगर हकूक पूरे नहीं करती तो फिर कोई और रास्ता हो इसलिए इस्लामी सियासियात में या मबरदी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ये सब लोग जो कुछ बहस करते हैं खुद शाहबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि अगर रियासत हमारे लिए बनाई गई और रियासत हमारे फलाह बहबूद के लिए है तो पांच हकूक रियासत के जिम्मे रियासत का फर्ज बनता है हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो पांच चीजों में हमारी हिफाजत करे सबसे पहली चीज कहते हैं दीन की हिफाजत करे कि मुमलिकत अपनी हदूद के अंदर अगर कोई इसकी हदूद मुतय्यन है या मुसलसल जिहाद जारी रहने की वजह से हदूद आज मुतय्यन नहीं है कल और इलाका आ गया कुछ और इलाका आ गया तो रियासत की जिम्मेदारी यह है कि सबसे पहले दीन की हिफाजत करे अगर दीन की हिफाजत करेगी तो वो किसी भी ऐसे अकीदे और नजरिए का प्रचार नहीं होने देगी जो अकीदा और नजरिया इस्लाम से टकराव है इस्लाम के मुखालिफ वो लोगों को मजहबी आजादी देगी कहेगी तुम ईसाई हो तो ईसाई रहो यहूदी हो तो यहूदी रहो हम तो फिर जबर नहीं करते लेकिन हमारी मुमलिकत के जो बाशिंदे हैं इनके दीन को तब्दील करने की कोशिश मत करो हम तुम्हें दावत देते हैं इसलिए कि दीन की बुनियाद हमेशा वही पे होती है और वही जहां भी महफूज है वो असर आपके यहां उसके कहीं महफूज नहीं है इसलिए हम आपकी बात नहीं कहते हम अपनी बात इसलिए करते हैं कि हमारे पास वही महफूज है
वही इलावा कोई दिन चलता ही
तो रात की तहरीफ का ये हाल है कि 17वीं सदी के एक नुस्खे की नुमाइश की गई लंदन और उस पे अभी रिपोर्ट आई है इंटरनेट पे भी शायद मिल जाए न्यू दिल्ली जो जो इंडिया का बड़ी मशहूर अखबार है ना उसने शायद की उसका तलाश हमने देखा तो उसने कहा कि वहां पर सबसे ज्यादा जो चीज उन्होंने दिखाई वो तौरात का वो कितना था जो गलती से लिखा गया था लिखना ये था कि एडल्ट्री बदकारी ये गुनाह न करो और उसमें लिखा हुआ है कि ये गुनाह करो वो कहते हैं कि ये देखो 17वीं सदी में वहां पर ये कितना लिखा हुआ मिल जाएगा बाइबल में ये काम किया और असल ये तक ना किया कर अब सोचने की बात यह है उस सदी में जिसने भी इसको पढ़ा होगा अगर ने नकल और शऊर दिया होगा तो वो कहेगा कि ये गलती हो गई है लिखने में लेकिन जिसे अकल और शऊर इतना ही होगा वो कहेगा तो इस और आपका हुक्म आ गया इसको समझ करना चाहिए तो जहां पर कहीं महफूज है रियासत का फर्ज है कि उस व्यक्ति को तबलीग करे और फिर रियासत इन चीजों की तबलीग करती है इस्लाम कहता है मुसलमान के दीन की तुम इबादत करोगे इनमें से कोई मुर्तद हो जाता है तो रियासत की जिम्मेदारी है कि ऐसे उलमा होने चाहिए रियासत के पास जो उस मुर्तद को बिठाएं और उसके सवाल के जवाब दें इख्तलाफ के जवाब दें वो कहीं भी वो कहता है कि दीन नहीं रहना चाहता दीन में ये गलती है ये गलती है ये गलती है तो इत्मीनान दिला जाए कि बेटे ये गलती नहीं है आप तो ऐसे समझिए आप इस चीज को पढ़िए ऐसे समझिए इस चीज को पढ़िए अगर रियासत में ऐसे उलमा नहीं है जो अगली नस्लों के सवालात का तशफी वक्त जवाब दे सकें तो रियासत दीन की हिफाजत में अकीदे की हिफाजत में नाकाम हो गई ऐसी रियासत का क्या करना है दूसरी जिम्मेदारी जिसमें ये सारे इस्लामी फकीरी शामिल अल्लाह समेत वो कहते हैं रियासत की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो जिंदगी की हिफाजत है और पूरी मुमलिकत में कोई आदमी कहीं जाए उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो महफूज है ये जो पहली दीन की जिम्मेदारी है इससे एक बात ख्याल में आ गई सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने मुकदमा पेश हुआ लोग आधी बात सुनाते हैं आधी ही सुनाते हैं ईसाई शहजादा था तवाफ कर रहा था तो उसकी चादर पे एक बद्दू का पांव आ गया तो शहजादा था नया नया मुसलमान हुआ था दो चादरें उसने एहराम की ओढ़ी हुई थी तो जब बद्दू का एक आम देहाती आदमी का पांव आया तो उसने मुड़ के बैतुल्लाह में पड़ मारा कहने का मकसद यह था तमीज नहीं चलने वो चला गया उमर के इस्लाम के पास हजरत उमर के इस्लाम फरमाया मुझे थप्पड़ मारो उसने कहा मेरे मोमिन अगर मुझे थप्पड़ पड़ेगा तो इसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकलेगा सैयदना उमर के इस्लाम फरमाया अच्छा धमकी देते हो और उसके हाथ पकड़वाए उसने थप्पड़ मारा जब थप्पड़ मारा तो जाके मुर्तद सैयदना उमर के इस्लाम को बस इतनी लोग बात सुनाते हैं कि उमर के इस्लाम के जमाने में कितना ज्यादा इंसाफ था लेकिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब पता चला तो तारीख में कई जगह पर नदामत का इजहार फरमाते हुए अपने फैसले पे फरमाया मैं कभी अनजा ऐसे नहीं करूंगा कि जो लोग नए नए मुसलमान हो गए हैं मैं इनके साथ ऐसा सलूक करूं और लोग मुर्तद हो जाएं मैं अनजा ऐसे कभी दीन की इबादत हुई थी ना तो इसलिए फरमाया कि जो हो गया बस हो गया मैं अनजा ऐसे नहीं करूंगा आज ही बात लोग सुनाते हैं वाकई इतना देखकर क्योंकि अगर पूरी बात सुनाए तो दीन की अहमियत ज्यादा होती है और आधी बात सुनाए तो इंसाफ की अहमियत फिर उनके नजदीक ज्यादा होती है ताकि इंसाफ का एक पैमाना अपने पाप से आधी रिवायत से मुकर करके गवर्नमेंट को गिरफ्तार किया जाए ये सारे मकासिद फिर ऐसे होते
دین کی حفاظت اتنی ضروری اتنی زیادہ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو جو نئے نئے مسلمان ہوئے مستقل بحث اس پہ کہ زکات کی مد میں مؤلفۃ القلوب ہے یعنی جن کا دل بچانے کے لیے دل رکھنے کے لیے مال خرچ کیا جائے گا یعنی حنفی فقہا میں ابتدائی دور میں جب اسلام کا عروج تھا تو کہتے تھے اسلام کو اتنی طاقت مل گئی ہے کہ ہمیں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی کافر ہوا ہے اسے ہم مال دیں تاکہ مسلمانوں میں رہے کاروبار کر سکے وہاں سے آیا ہے تو ظاہر ہے ہر آدمی جتنا بھی ہو مال کی طلب تو پہلے دن ہی نہ نکل جائے گی پہلے دن کو وہ حضرت شیخ ان کا جنانی رحمت اللہ کام پر تو نہیں نہ پہنچ جائے گا اس کو مال کوٹ دے گا اسلام میں جمنے کے لیے تو کئی صدیوں پر یہ بحث ملے گی حتیٰ کہ حنفی فقہا نے اس بات کو بھی لکھا انہوں نے کہا یہ جس کے پاس مال ہے اس کی ثواب دین پر ہے کہ اگر کوئی کافر کو دیکھے اور سمجھتا ہے کہ اسے میں مال دے دوں اسے چھوٹی موٹی دکانداری کروا دوں اس کے بیوی بچوں کے لیے کپڑے مہیا ہو جائیں پھر مکان کرائے پر لے لیں اسلام کو اسٹڈی کرے آرام سے ذرا رہے مسلمان دے گا تو زکات کا مال سے دیا جائے دین کی حفاظت اتنی ضروری اور دوسری چیز جان آ گئی وہ کہتے ہیں مقاصد شرعیہ میں سے یہ ہے کہ زندگی کی حفاظت ہونی چاہیے اور اتنی حفاظت ہونی چاہیے کہ پوری مملکت میں قتل نام کی چیز نہ رہے اور خون کوئی نہ کرے اسی لیے مسلمانوں کو اتنا اس پر روتا اور اعتماد تھا ماضی کے حوالے دو طرح سے دیے جاتے ہیں ایک ماضی کا حوالہ دیتے ہیں لوگوں کو فخر کی رضا دینے کے لیے کہ ہمارا باپ ایسا ہو دادا ایسا ہو میں ایسا ہو فلانا ایسا یہ فخر کی جو غذا ملتی ہے یہ آدمی کو بڑا بیکار کر دیتی بس وہ ذات کسی سے تصور میں رہتا ہے کہ باپ ایسا تھا اور بڑے ایسے تھے اور دادا ایسے تھے اور کیا پوچھتے ہو یار کے پاس تو ہزاروں کنال زمین ہوتی تھی یہ سارا گاؤں ہمارا یہ سارے وہ پہاڑ کا کنارے پاس دادا کی زمین تھی بھائی تم نے کیا کیا دادا کی زمین کی چلو تھی یہ ہے غلط چیز اور ایک ہے ماضی سے اس لیے رشتہ منسلک رکھا جائے کہ آدمی ان کو دیکھ کر ہمت کرے اور اس اچھے قدم پہ چلے اس لیے ماضی سے رشتہ رکھنا ضروری حرموں کا ایک شاعر کہتا ہے اذا بلغ الفطام لنا طبیعی ہمارے دودھ پیتے بچے جب وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگتے ہیں نا یعنی اپنے دشمن کو کہتا ہے کہ تم ہمارا قبیلہ مٹاؤ گے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے جب گھٹنوں کے بل تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں چلنے لگتے ہیں بس روح لہو جواب ہے تو دنیا کی بڑی بڑی جابر طاقتیں حکمران آ کے انہیں سجدہ کیا کرتے ہیں ہمارا یہ حال ہمارے بچوں کو سچتے ہوتے تو ماضی سے یہ بھی جوڑا جاتا ہے اور یہ صحیح چیز ہے کہ آدمی سوچے پہلے کیا کرتے تھے کیسے اس کی عظمت تک پہنچے اتنا خون کا احترام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ وہ انتہائی درجہ محتاط تھے اپنے نائب مقرر کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ ایک ان کا گورنر آیا ہے ٹھیک ٹھاک ہے ساری باتیں سچی ہیں جانے سے پہلے کہتا ہے کہ لوگوں کی آج رات میں نے خواب دیکھا مسافہ کرنا ہے آپ کو سب جانا ہے فرمایا کیا کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند میں لڑائی ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ تم کس کے ساتھ تھے اس نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ورزش منسوخ کر فرمایا مت جانا نے آج کی وہاں بھیجی اس نے کہا میرا اس میں کیا قصور ہے تمہارا کوئی قصور نہیں لیکن جو خواب ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے اور یہ میرے لیے ہی ہے فرمایا دیکھو عقل فرمایا سورج دلیل ہے دن کی اور رات دلیل ہے چاند دلیل ہے رات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسی لڑائی ہوگی کہ تم ان لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ گے جو رات والے ہیں دن والوں کو چھوڑ دو گے تو حق کے مقابلے میں جس کو اختیار کرو گے وہ کم حق والے ہوں گے نا तो तुम्हारा उनको इख्तियार करना इस बात से तुमको पता चलता है कि तुम्हारी फिक्र सही नहीं है तो मेरा काम है सलमान को मैं इंसान जानदार की गुजरशिप गई कोई 15-20 साल के बाद सीजन आदि और मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की जब लड़ाई हुई तो ये साहब मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के साथ तो लोगों ने कहा ये तुम्हारे पाप की तामील अब पूरी हुई है कि सूरज के मुकाबले में चांद के साथ इतने मौका से हजरत उमर रजी अल्लाह इसके बावजूद फरमाया कि मेरी मुमलिकत में फांसी किसी की सजा कोई भी अदालत तय कर ले सब बदला मदीना मनोरा भेजा जाए जब तक मैं ना हूं फांसी किसी को नहीं चढ़ा हालांकि फैसला करने वाले सहाबा रजी अल्लाह भी थे सारे बड़े बड़े की जिंदा थे हजरत उमर रजी अल्लाह को बड़ी फिक्र थी हत्ता कि मुआज़ इब्ने जबल रजी अल्लाह में इतनी कदर थी हजरत उमर रजी अल्लाह को आदमियों की काम के आदमियों की कि मुआज़ इब्ने जबल रजी अल्लाह आए हजरत अबूबकर रजी अल्लाह के पास और कहा हजरत इजाजत दें मैं शाम जाना चाहता हूँ पर मैं मुआज़ क्यों जाना चाहता हूँ ये खिलाफत सिद्दीकी है उन्हें कहा जाना है चाहता हूँ जिहाद करना है तो अबूबकर रजी अल्लाह जब उन्होंने कहा हजरत उमर रजी अल्लाह का इन्हें रोक ले मुआज़ को ना जाने क्यों उन्होंने कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन वाले लोगों की मदीना मुनव्वरा इज्जत है जो फतवा दे नए नए हालात पेश आ रहे मुआज़ जब चले गए जंग में तो फतवा कौन देगा तो उन्होंने कहा अमीर मोमिनीन उन्होंने कहा अबूबकर रजी अल्लाह कि मैं शहादत हासिल करना चाहता हूँ तो उमर रजी अल्लाह ने फरमाया ये तो कोई दलील नहीं है शहादत तो बिस्तर पे भी आ सकती है खुद उनकी भी शहादत बिस्तर पे हो गई ना नहीं फरमाया शहादत तो बिस्तर पे भी आ सकती है अगर नीयत सही हो तो ये तो कोई दलील नहीं है कोई मुश्किल नहीं है तो उमर रजी अल्लाह ने बोले उन्होंने कहा एक आदमी अल्लाह की राह में शहादत हासिल करना चाहता है कैसे उसे रोक सकता जाओ उन्हें काम दे दिया हजरत इस्लाम कहते हैं मुआज के काम नहीं जाना चाहिए हमारे पास नहीं हम जरूरत है काम करने इतने आदमियों के कदरदान थे कत्ल खून मुसलमान की का हो जाए इतना सख्त खून की हिफाजत का मामला था कि ताइफ में कत्ल हो गया और एक आदमी के इवज में आठ या नौ आदमी हजरत इस्लाम ने कत्ल किया और फरमाया उन सब ने मिलके ये खून किया था खुदा की कसम पूरा ताइफ शहर में शरीक होता मुझे कोई परवाह नहीं थी मैं सारे शहर को सुनी दे देता इस आदमी का खून हुआ रियासत की जिम्मेदारी है रियासत की तीसरी जिम्मेदारी है कि वो माल की हिफाजत करे माल की हिफाजत इसलिए जरूरी है कि सबसे बड़ा गुनाह दुनिया में इंसानों के हुक्म में किसी के माल को छीनना है किसी के माल को जब्त करना सैयदना उमर रजी अल्लाह इतनी माल की हिफाजत पूरी इस्लामी तारीख में रही है इस माल की हिफाजत इतनी रही है मुसलमानों के माल की हिफाजत कि वो गवर्नर जिन्हें लोग कहते थे ये पाप की को फाजिर है रिश्ते करता है ये बड़ा जालिम है ऐसे है वैसे है वो कहता था कि ईरान में रस्सी गिर जाए तुम्हारे घोड़े की और तुम इराक से अगले दिन आ जाओ असर के नमाज के बाद रस्सी गिर गई और अगले दिन आओ फिर दो दिन बाद आ जाओ इराक से और अगर रस्सी अपनी जगह से हिली हुई हो तो तलवार लेके मेरी गर्दन काट और होता है चीज गिर जाती थी किसी की हिम्मत नहीं थी कोई उठा ले और कोई खाता था गांधी के पास ले जाता था माल किसी का ले लेना सवारी हजरत उमर रजी अल्लाह खुद भी इतने मोहताज थे जब कहर पड़ा है तो हजरत हातिब रजी अल्लाह ने कहा कि ये मेरे गुलाम है जुक्का लिखा मैं इन्हें बांध के गिरफ्तार करके भेज रहा हूँ इन्होंने फला आदमी की ऊंचनी दबा करके खा लिया अब इसके हाथ काट दीजिए सैयदना उमर रजी अल्लाह ने गुलामों से पूछा कि हाथ तुम्हें खाने को देते हैं उनका भी मुंह पेट नहीं भरता حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری تحقیق کرنے کے بعد حاطب کو لکھا کہ اگر تم بدری نہ ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں رہے ہو تو تمہارا یہ مرتبہ نہ ہوتا تو میں ان کے بجائے تمہارا ہاتھ کیوں نہ کٹوا دیتا اور فرمایا اپنے غلاموں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے اور مجھ سے کہتے ہو کہ میں ہاتھ کٹوا دوں حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا لیا جب وہ آئے تو جس آدمی کی اونٹنی ان غلاموں نے دبا کر کے کھا لی تھی اس آدمی کو کہا کہ تمہاری اونٹنی کے کتنے پیسے اس کا بھی مومنین اتنے دینار تھے حاطب رضی اللہ عنہ انہوں نے شاید کہا کہ 400 دینار تھے مجھے مل رہے تھے میں نہیں لے رہا تھا حاطب رضی اللہ عنہ کہا کہ 800 ہی دے ادا کرو دگنا جرمانہ یہ جو شافعی فقہا گئے ہیں نا کہ مالی جرمانہ ہو سکتا ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے پہ گئے ہیں کہ حکومت چاہے تو جرمانہ کر سکتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دگنی قیمت نکالی کہ لوگوں کی چیز کیوں غلط ہو جائے اتنا خیال تھا کہ جگہ لوگ پکڑے گئے پتا چلا جی بکری ذبح کر کے انہوں نے کھا لی تو فرمایا کتنے بکری والے کو بلایا عدالت قائم ہو گئی ساری تو ان سے بکری والے فرمانے لگے کہ یہ سارے مجرم ہیں اور انہوں نے واقعی بکری کھائی ہے اور یہ ہم اقرار بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی ذریات کے دور میں قحط کے دور میں میں حد ہی نافذ کیا کرتا ہوں تو میں کسی کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا کسی کو کوئی سزا نہیں دوں گا البتہ چونکہ تمہاری بکری ضائع ہو گئی ہے بتاؤ بکری کے عوض میں اگر میں تمہیں دو اونٹنیاں دوں مسلمانوں کے بیت المال سے 10-10 مہینے کی حاملائیں اور صبح یا شام ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور جب بچہ ہو جائے گا تو بہت دودھ دیں گی تمہارے برتن بھر جائیں گے تو بکری کے عوض میں وہ دو اونٹنیاں قبول کر لو گے کوئی شکایت تو نہیں رہے گی اگر کچھ نہیں تو اپنے غلام کو مسلم کو بلا کے کہا کہ بیت المال سے دو اونٹنیاں ایسی اس کے حوالے کر دو جو میں نے تمہیں کہی ہیں اس کو کوئی شکایت نہیں مال کی حفاظت تو دین جان مال تیسری چیز جو شریعت کہتی ہے ریاست کا حق بنتا ہے لوگوں کی عقل کی حفاظت کرے کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عقل سے کم پہ سودا کر لے اس کے سودے کو قائم رہنے دیا کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو انسانوں کی عقل کو زائل کرتے اسی لیے کہتے ہیں کہ مجھے شراب خانے نہیں کھولنے کیونکہ شراب پیے گا جوائنٹ پیے گا چرس پیے گا کوئی چیز پیے گا اس کی عقل میں خلل واقع ہو جائے گا جب عقل اس کی کم ہو گئی کوئی اس سے دستخط کروا سکتا ہے ہزار چیزیں سکتی ہیں اس لیے مملکت میں اسلام یہ ضروری قرار دیتا ہے کہ ہر وہ چیز جو عقل کو کم کرتی ہے اس پہ پابندی کرتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تربیت میں یہ بھی ایک کمال تھا لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت ان کی پیدا کر دی تھی تربیت ایسی کر دی تھی کہ ایک آدمی کو بھیجا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا گھوڑا خرید لاؤ گھوڑا لے کے آیا پیسے دے دیے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ گھوڑا کتنے کا آیا جی 200 کا تو فرمایا جلدی جاؤ یا خود چل پڑے جلدی اور فرمایا مالک کہاں ہے منڈی جب آدمی چلا تو نہیں گیا پتا چلا منڈی میں ہے اسے پکڑ لیا اسے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اسے اپنے علاقے کا نام بتایا تو فرمایا آپ پہلے کبھی منڈی میں آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں منڈی میں کبھی نہیں آیا تو میں پہلے کبھی گھوڑوں کی خرید و فروخت کی ہے کبھی میں ایک گھوڑا انہوں نے کہا جی میں نے پالا تھا پھر مجھے ضرورت پیش آ گئی کہ میں نے گھر لگ مشورہ کیا بیوی کا بیچ کر میں بیچنے آ گیا سنا آپ کو پتا ہے یہ گھوڑا کتنے کا ان کا کچھ نہیں تو 200 اس کو واپس لیے اس سے گھوڑا دے دیا اور فرمایا یہ سودا کم عقلی کا ہے میں نئے سرے سے سودا کرتا ہوں 300 لوگ کا جی لوں گا فرمایا گھوڑا 400 میں بیچو گے کہ 400 میں بیچے گا جب 500 600 700 تک پہنچے تو جی آپ نے لینا ہے گھوڑا ہی مذاق کر رہے ہیں فرمایا لگے میں مذاق نہیں کر رہا اور 900 دے کر اسے گھوڑا خریدا اور انہوں نے کہا اپنے غلام کو اس کو
उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया था कि कोई भी आदमी किसी की कमजोरी से या किसी की मजबूरी से जल्दी याद रखनी चाहिए फरमाया किसी की कमजोरी से या किसी की मजबूरी से फायदा उठाकर उसकी चीज मार्केट से कम कीमत पर खरीद लेगा तो अगर ये सौदा हो जाएगा लेकिन अल्लाह उस खरीदारी में बरकत दीजिए तो फरमाया 200 में तुम ले आए थे ये 900 का बंदा है मैं 200 का ले लेता और इस पे मैं सवारी ना कर पाता अल्लाह मुझे किसी और मुसीबत में डाल देता और इसमें बरकत ना होती तो मेरे 200 भी गायब हो जाते इसलिए जो मजबूरी में खरीद और फरोख्त होती है ना कि मार्केट में मकान की कीमत कितनी है कह रहे जी है तो करोड़ लेकिन वो बड़ा मजबूर है जी आपके 80 लाख में आपको दे देगा लोग टूट पड़ते हैं किसी तरह चीज को खरीद लो गाड़ी बेचती है कह रहे हैं जी गाड़ी देख रहे हैं आप तो बंदा समझता है कि यार गाड़ी ये जो है इसकी कीमत 80 लाख है कहते जी मैं 40 में बेचता हूँ मेरे लिए इज्जत का मसला बन गया है अदालत में बैठे होगा नहीं बच्ची की शादी है फलां है बच्चों की फीस है दूसरा खरीद लेता है ये भूल जाता है कि ये तो ठीक सौदा तो हो गया कानूनी तौर पर ठीक लेकिन इस गाड़ी में उस चीज में बरकत नहीं रहेगी पता नहीं कि उस घर में रहेगा तो कितनी बीमारियां आएंगी और उस घर में रहेगा तो रहना भी नसीब होगा किसी इतनी जरूरी है कम अकली की बातों क्या तंजीर के सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जमाने में कानून बनाया था अब नहीं लागू होगा उन्होंने कहा दुल्हन लड़की अपनी शादी के पहले साल में जितनी माली मामला करेगी हम उसको नाफिज नहीं करेंगे और उन्होंने फरमाया कि जब वो नई नई ब्याह की आती है और उसके ससुराल कुछ दिन तक उससे अच्छा सलूक करते हैं और भी अच्छा सलूक करता है उसके पास जो जेवर कपड़ा जायदाद जो कुछ होता है ससुराल को दे देती है और आप आप चंद महीनों के बाद जब हालात बदलते हैं तो ये सारी इसकी चीजों पे कब्जा कर लेते हैं और वो उस वक्त तनाव हो जाती है अगर उसे तलाक दें तो उसके पास कोई चीज नहीं और रखते हैं तो उसे तंगी के साथ रखते हैं इसलिए पहला बच्चा हो जाए या एक साल पूरा हो जाए ताकि दोनों को एक दूसरे का तजर्बा हो जाए इसके बाद वो जाकर कोई माली इतना मामला करना चाहती है उससे मानता हूँ उससे पहले नहीं मानता ये अकल देखो ये समझदारी थी ये सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत का असर था इसलिए अकल की हिफाजत छोटी चीज दी है जान दो माल दीन अकल चार और पांचवी चीज से शरीयत जरूरी करा देती है सेहत का फर्ज बनता है वो कहते हैं नसब की हिफाजत कहते हैं नसब की हिफाजत जरूरी है अगर नसब की हिफाजत नहीं रहेगी तो कुछ पता नहीं चलेगा कौन किसका बेटा है किसका भाई है किसका भतीजा है क्या पता चलेगा जब गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेगी तो वह ऐसी तमाम सूरतों को मना कर देगी ऐसे तमाम औरत पर पाबंदी लगा देगी जहां नसब की हिफाजत नहीं होती पता ही नहीं कि कौन किसका बेटा है किसका किसान क्या रिश्ता बनता है और ये कई मरतबा हो जाता है कि सरमायादार जब मरते हैं बड़े बड़े तो फिर झगड़ा उठ खड़ा होता है कि जी मैं भी इसकी बीवी मुझसे ये मुखिया निकाह कर रखा था फिर उसके बच्चे भी आ जाते हैं कि जी हमारा भी हिस्सा है इस जायदाद में अब वो पिछले परेशान होते हैं कि इसका हिस्सा है नहीं है ये रिश्तेदारियां हैं नहीं है ये क्या चीज हो जाती है नसब की हिफाजत नसब में इख्तिलाफ जब पैदा हो जाता है और खुदा ना खास्ता वलिया बिल्ला अगर पता ना चले और ऐसे में रिश्ते हो जाए भाई बहन फिर फिर क्या हो इसलिए शरीयत कहती है नसब की हिफाजत जरूरी ये तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर देगी थी को उसने कराची में कुंगूड़ा शुरू किया और कुंगूड़ा टीम के नाम से उसे शुरू कर दी हर एक अस्पताल में तकरीबन उसने कुंगूड़े रख दिए और हर जगह लिख लगाया कि अपने बच्चों को कूड़े पे ना फेंकिए हमारे कुंगूड़े पे डाल दीजिए और बच्चियां और जो भी है आती हैं डाल कर देते हैं और उन्हें दे देते हैं उनकी परवरिश करते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह कहते थे मकसूद में तरक्की की मकसूद में उनकी ये रिवायत आई है सैयदना अली रज़ी अल्लाह फरमाते थे अगर खिलाफत का बोझ मुझ पे ना होता तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई नेकी नहीं थी
کہ جس بچے کا نظر لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے میں اس کی تربیت کرتا ہوں اس کی بہت بڑی بات ہے کہ خلافت کے مقابلے میں اُلا رہے ہیں جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی نے آذان کا پوچھا کہ آذان کا ثواب تو اُن کا ثواب پوچھتے ہو اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا تو موصل ہوتا آذان کا اتنا بڑا ثواب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جن بچوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا جن کا نظر غلط ہے ان بچوں کو میں پالوں میرے لیے بہت بڑی اجر کی چیز ہے نظر کی حفاظت ضروری اسی لیے موتا میں آتا ہے امام مالک نے کہا ہے اللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ایک آدمی بچے کو لے کے آیا اور اس کا امیر المومنین میں صبح نماز کے لیے آیا اور یہ رو رہا تھا بچہ میں سے ایک جیل سے اٹھا لیا ہے اس کا کیا کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے لے آئے ہو کہ اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا جب آیا مطلب یہ تھا کہ بچہ تمہارا ہی ہے بچے اب زیادہ ہو گئے ہیں تب اس بہانے سے مجھے دینا چاہتے تو ایک اور آدمی نے اٹھ کے کہا اس کا میرے مومنی کی بڑا نیک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا لے جاؤ اس بچے کو پالو اور اس سے جو بھی نفع ہو وہ اٹھاؤ اور اس کی تربیت کرو اور اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں میرے تمہارے سامنے حکومت دے بیت المال خرچ کرتا رہا بچہ بڑا ہو گیا شادی کی اس کو اجازت نہیں کہ جہاں مرضی کر لے اور سارے اخراجات اس کے بیت المال نے ادا کیے اسی لیے جو اب مسئلہ اٹھا ہوا ہے نا کہ ایسے بچوں کے نسب میں کیا لکھا جائے گا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے کے نسب میں اس کا نام لکھا جائے جو اسے لے کے آیا اٹھا کر لایا وہ کہاں کہتے ہیں اس کا نام لکھا جائے گا اس کو باپ قرار دیا جائے یا پھر جو امیر المومنین یا خلیفہ وقت اسے قبول کرتے ہیں ان کا نام دیا جائے جو بھی اسے قبول کرتا ہے تاکہ آگے کوئی طرح چلے نہ اس سے آگے تو سلسلہ صحیح ہو جائے یہ پانچ حقوق ہیں ریاست کے ذمے ریاست ہماری ان حقوق کا دفاع کرے جب ریاست ہمیں یہ حق دے تو اس ریاست کا ایک ایک انچ مقدس ہے اس کا ایک ایک فرد قابل احترام ہے اس کی حفاظت کے لیے جہاد ہے اس کی حفاظت ضروری ہے اس کو بچانا ضروری ہے جب ریاست یہ پانچ حقوق پورے کرے تو پھر اس ریاست میں اتنا حق بنتا ہے امیر المومنین کا قاضی کا صدر کا اس ریاست کا کہ وہ اگر مباح کام سے منع کر دے تو مباح کام کو کرنے والا گناہگار ٹھہرے گا ایسی بھی اتنے اختیارات ہیں مطلب تمباکو کا پینا مباح جائز ہی ہے نا تمباکو سارے دنیا میں بزرگ بھوکے پیتے تھے پان اب بھی کھاتے ہیں سارے انڈیا کے بزرگ پان سے تمباکو نہیں ہوتا وہ سگریٹ کے تمباکو سے زیادہ سخت ہے یہ تو پھر چھن کے اندر جاتا ہے تو ڈائریکٹ جاتا ہے تو تمباکو جائز ہے فتویٰ اسی پہ ہوا کہ تمباکو کا کھانا جائز سگریٹ سے اس لیے روکتے ہیں کہ بچے آگے خرابی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں جو بچے سگریٹ پیتے ہیں انہیں کوئی شریف آدمی پسند نہیں کرتا سوسائٹی میں یہ گراوٹ نہیں آئی کہ کوئی پیتا ہی پھرے ہے مباح کل کو اگر ریاست کے پانچ حقوق ادا کرے اور اس کے بعد گورنر وہ تو بڑی چیز ہے جو اسٹیٹ سٹی کا کہہ دے کہ اس شہر میں سگریٹ نہیں کیا جائے گا تو سگریٹ پینے والا گناہگار ہو جائے اس لیے کہ اس نے نافرمانی کس کی ہے ان لوگوں کی ہے جو اس کے حقوق پورے کرتے ہیں ساری چیزیں اس سے مہیا کرتے ہیں اس کے دین کی حفاظت ہے عقل کی حفاظت جان کی حفاظت مال کی حفاظت نسب کی حفاظت پانچوں کی جب حفاظت کر رہے ہیں ان پانچ چیزوں کا دفاع کرنا فرض ہے اور ان پانچ چیزوں کے دفاع کے لیے جو لڑا جاتا ہے یہ جہاد ہے اور جب یہ پانچ چیزیں ٹھیک ہوں حکومت ٹھیک ادا کر رہی ہو اس کے خلاف کوئی اٹھے ہتھیار دے کے تو یہ بغاوت ہے جو حرام ہے اور پانچ چیزوں کی حفاظت ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے اب ان پر حملہ کرنا یہ جاری ہے یہ ہے جہاد اور جارحیت کہ جہاد ان پانچ چیزوں کی حفاظت کا نام ہے اور نہیں حفاظت ہو رہی تو پھر ان کے ساتھ لڑو وہ بھی جہاد ہے اور اگر ہو رہی ہے پھر اس پہ حملہ کرنا یہ جارحیت ہے کیوں لوگوں کو تنگ تنگ کرتے ہو اسلام اور اسلام صرف ये बड़े काम की बात याद रखने की है कि इस्लाम सिर्फ इन पांच चीजों की हिफाजत मुसलमानों ही की नहीं वो दुनिया की हर हुकूमत को कहता है कि इन पांच चीजों की हिफाजत करो जब वो नहीं कर पाते तो इस्लाम कहता है उनको और दुनिया के लोगों को तुम भी अपनी तरह इन पांच चीजों में महफूज करो वो महफूज नहीं है तो फिर उनसे लड़ो ये जिहाद नसब उनका महफूज नहीं मतलब काफिरों की जान महफूज नहीं काफिरों का माल महफूज नहीं है वहां पर स्टेट में टैक्स लगे हुए हैं वो टैक्स बटोरते रहते हैं लोगों को उनके हकूक नहीं देते तो इंसान है ना ये इंसानी हकूक हैं इन इंसानी हकूक को देने के लिए लोगों को पूरी दुनिया में आम करने के लिए आप तुम और जा ये है वो चीज जो शाह अब्दुल्ला रहमतुल्लाह कहते हैं और दीगर साथी इंशाल्लाह बाकी अंदर